श्री कृष्ण जगन्नाथ कथा की 7 दिन का सूत्र प्रारंभिक दिन में आप लोगों का स्वागत है। एक कागज मुझे दीजिए। कुछ भक्तों के पास ये कागज पहुंचा होगा, उसमें शुरुआत में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी का प्रार्थनाएं हैं, मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते तु हरत्राण, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्स, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पुरोज। देवी त्वं विष्णु मायाति मोहयन्ति चराचरं, हितपद्मासनं संस्थासि विष्णु भावानुसारिणि। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वाला कुमुदिनी सूर्य समप्रभा, ज्ञानमति निरन्तरानां वैकुण्ठात्त प्रदर्शक। नमस्ते नित्यविलसत् वैष्णवास्त्रनिकेतन, अवैरवीर्यं यद्रूपं वैष्णवस्तत्प्रणमाम्यहम्। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। चातुर्यैकनिदान श्रीमचपला पाङ्गच्छटामन्तरम्, लावण्यामृतवीतिलोलितदृशं लक्ष्मीकटाक्षादृतं, कालिन्दीपुलिनाङ्गनां प्रणयिनां कामावताराङ्कुरं, बालं नीलं ममी वयं मधुरिमा स्वाराज्यमाराध्मुमः। मज जन्मने फलम् इदं मधुकैठवारे, मत्पार्थनीया मदनुग्रहये सैव, तद्भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्या इति मां स्मर लोकनाथ, भृत्यस्य भृत्या इति मां स्मर लोकनाथ। हरे कृष्ण। आज से लेकर अगले 7 दिनों तक जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का कथा हमारे मंदिर में पिछले 3 सालों से हो रहा है। 3 साल पहले जब रथ यात्रा आने वाला था उस दिन बाकी था, उससे पहले मेरे मन में एक विचार आया कि हर समय गौर पूर्णिमा के समय गौर लीला होता है हर जगह, जन्माष्टमी
कृष्ण लीला होता है, क्यों ना जगन्नाथ जी रथ यात्रा समय जगन्नाथ जी का कथा क्यों ना हो। फिर इस विचार को मैंने प्रभु जी के सामने रखा, फिर प्रभु जी ने कृपा बस मुझे आदेश दिए थे कि करो इस कथा को। तो प्रथम वर्ष शायद 3 दिन का हुआ था, फिर द्वितीय वर्ष जो पिछले साल 6 दिन का था और इस साल 7 दिन का है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता था कि जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारा किताबें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का कहना है नहीं मिल रहा है, और कुछ भक्तों का ऐसा भी वांटिंग है कि हिंदी में किताबें नहीं मिल रहा है। मगर अभी जब से मैंने जगन्नाथ जी के ऊपर ऐसे सब खोज करना प्रयास किया, तभी से जगन्नाथ जी की कृपा से ऐसे बहुत सारा ग्रंथ उपलब्ध हैं जो कि शायद मालूम नहीं रहता हमको। हमारे इस्कॉन के जीवीशियों में से भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उन्होंने जगन्नाथ जी के ऊपर 2 किताबें बहुत बड़े बड़े और अच्छे किताब लिखे हैं। महानिधि स्वामी ने भी जगन्नाथ जी के ऊपर लिखे हैं। गौर गोविंद स्वामी का, गौर गोविंद महाराज जो कि वो ऐसे आचार्य थे, इसी जगन्नाथ कथा को व्यास आसन में बैठकर कहते कहते वो गोलोक धाम गए थे, ये गौर गोविंद स्वामी महाराज। और उनके भी कहीं किताबें उपलब्ध हैं, प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अनेकों, और खास करके गौर गोविंद महाराज का एक पब्लिकेशन गोपाल जी पब्लिकेशन, उसमें कृष्ण कथामृत करके एक मैगजीन आता है। खास करके पहली बार 3 साल पहले मैं उस मैगजीन को देखा तो उसमें इस सारा चीजों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जगन्नाथ जी कथा भी 7 दिन का हो सकता है। तो बाद में प्रयास किए थे। ऐसे अनेकों किताब अभी उपलब्ध होता है और अनेकों भक्तों ने उसके ऊपर प्रवचन भी करते हैं। खास करके हम हमारे इस जगन्नाथ जी के, भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के लीलाओं को बहुत अच्छी तरीके से पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने अपनी किताबों में प्रस्तुत किए हैं, और गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उनकी लेक्चरों में यानी उनके प्रवचनों में और उनकी किताबों में ये जगन्नाथ जी के पीछे की जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, गौड़ीय वैष्णव भाव है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पिछली बार स्नान यात्रा के दिन मेरा सेवा था प्रवचन देने का, तो मैंने उस समय जगन्नाथ जी किस प्रकार से ये दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे, किस दिन, मैं उसके बारे में बताया था थोड़ा कुछ जो भी मालूम था। और उसके बाद आज से लेकर 7 दिनों तक हम लोगों ने देखेंगे किस प्रकार से जगन्नाथ जी के गुह्य परिचय, क्योंकि जगन्नाथ जी का ये जो परिचय है छुपा हुआ है, ये गुह्य है, सीक्रेट। तो इस गुह्य परिचय के बारे में और उनके गुह्य लीलाओं के बारे में इन 7 दिनों में बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आज प्रारंभ करना चाहता हूं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं, किस प्रकार से उनका ये जगन्नाथ जी का रूप हुआ, वो है कौन, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले उसका परिचय जानना जरूरी है, वो कौन है, ये असलियत में जगन्नाथ जी है कौन। इस प्रकार से अद्भुत रूप से दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े आंख हैं, बहुत बड़ा सा मुख है, हाथ छोटे छोटे हैं, पैर नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों जन और उनके बाजू में एक खंभा जैसा एक लकड़ी है, ये इसके पीछे क्या रहस्य है, ये कौन है ये जगन्नाथ असलियत में। तो ये प्रश्न का जवाब अगर उड़ीसा में जाकर हम पूछेंगे जगन्नाथपुरी में, तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे अलग अलग तरीके से, मगर इन सारे चीजों को हमारे गौड़ीय वैष्णव ने बहुत आसान तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कर दें। असलियत में ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और उनके बाजू में 2 जन जो है, वो बीच में जो है वो माता यो सुभद्रा मैया है भगवान कृष्ण की बहन और वो बड़े भाई बलदेव जी हैं बलराम और वही यहाँ पे बलभद्र हैं। यही कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के रूप में जगन्नाथपुरी में श्री क्षेत्र जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम पे जाना जाता है वहां पे उन्होंने इस कलयुग के पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रकट हुए हैं। अगर श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं, बलदेव ही बलराम हैं या सुभद्रा मैया वही सुभद्रा मैया हैं, तो उसको बहुत कुछ लोगों को प्रमाण चाहिए रहता है कि किस प्रकार से वही है। देखिए दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक प्रकार के भक्त होते हैं जो इतने श्रद्धालु होते हैं वैष्णव या भक्त लोग जो भी कहें उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और कुछ ऐसे जिज्ञासु होते हैं, उनको जानना जरूरी रहता है कि असलियत में प्रमाण क्या है जगन्नाथ जी ही कृष्ण है करके, ऐसा कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक खासियत था, गौर गोविंद स्वामी महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य थे, मैं जो उनके बारे में जिज्ञासा कर रहा था, उनका क्या खासियत था, वो हमेशा अपने शिष्यों को प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने के बाद अगर शिष्य शास्त्रों की कोटेशन के साथ या प्रमाण के साथ अगर उदाहरण अगर जवाब नहीं देगा डंडा पकड़ के मारेंगे उसको, मूर्ख गधा बोलेंगे। जवाब रहता है मगर जवाब को साबित करने के लिए शास्त्रों का प्रमाण चाहिए, ये उनका कहना। तो इसलिए अनेकों ऐसे प्रमाण हैं और हम जान पाएंगे आगे आगे कि कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। कुछ छोटे छोटे प्रमाणों को मैं प्रस्तुत करूंगा। जगन्नाथपुरी में जो इतना बड़ा सा मंदिर है, मंदिर का नाम श्री मंदिर है, और उस श्री मंदिर में जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, और हमेशा एक विग्रह के साथ एक उत्सव विग्रह रहता है ना। जैसे हमारे गिरिधारी जी हैं, चंदन यात्रा के समय आप लोग देखे होंगे कि गिरिधारी जी के साथ रोजाना जो चंदन किसको लगाते थे, छोटे गिरिधारी जी को, है ना, वो उत्सव विग्रह है, विग्रहों को ऐसे दिखाना, उत्सव विग्रह कहते हैं उसको। वैसे ही जगन्नाथ जी का भी एक उत्सव विग्रह है, असलियत में उस उत्सव विग्रह को उड़ीसा में चलंती विग्रह कहते हैं। चलंती मतलब जो चलता है, चलंती विग्रह, क्योंकि अभी देखिए चंदन यात्रा में नौका विहार करने के लिए जगन्नाथ जी को जाना, तो जगन्नाथ जी इतने बड़े नहीं जाएंगे, तो जगन्नाथ जी का जो चलंती विग्रह हो जाएगा। जैसे कि जन्माष्टमी के समय हम लोग गिरिधारी जी का, सब ठीक है, जब हम गिरिधारी जी का अभिषेक करना है तो हम लोग किसका अभिषेक करते हैं, गिरिधारी जी के जो उत्सव विग्रह है उसका अभिषेक करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह है, चलंती विग्रह, वो कौन है मालूम है, वो मदन मोहन जी हैं। अभी जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं होते तो जगन्नाथ जी को आवाज में कुछ किया उसने अच्छा, तो अगर जगन्नाथ ही कृष्ण नहीं होते तो जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह मदन मोहन कैसे हो सकते हैं। मदन मोहन कौन है, जगन्नाथ जी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हम अभिषेक करते हैं गिरिधारी जी का, तो गिरिधारी स्वयं रहते हैं मगर उत्सव विग्रह में आते हैं, हम उनका अभिषेक करते हैं, वैसे जगन्नाथ जी का कोई भी उत्सव होता है तो मदन मोहन जी का विग्रह जाता है उत्सव में। तो इससे प्रमाणित होता है जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण यह है, वो क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो कि राधा भाव में कलयुग में अवतरित हुए थे, और उन्होंने जब भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे वो किस प्रकार से दर्शन करते थे, श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करते थे। तो ये दूसरा प्रमाण है। जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में जो जगन्नाथ जी का वर्शिप होता है, जो पूजा की जाती है, भगवान जगन्नाथ जी को गोपाल मंत्र के द्वारा पूजा की जाती है। ये गोपाल मंत्र केवल कृष्ण का ही पूजा की जा सकती है इस मंत्र के द्वारा। अगर जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं होते तो गोपाल मंत्र के द्वारा पूजा नहीं की जाती। जिस प्रकार से ये चौथा, जिस प्रकार से वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में या धूप के समय राधा और कृष्ण को, जुगल मूर्ति को, जुगल किशोर को सखियों ने, गोपियों ने चंदन लगाकर उनको नौ विहार कराते थे, यमुना जी, यमुना में, यमुना नदी में नौका में बिठाकर उनको घुमाकर लाते थे राधा और कृष्ण को। ठीक उसी प्रकार इसी ग्रीष्म ऋतु के समय भगवान जगन्नाथ जी के जो मदन मोहन विग्रह है और जगन्नाथ जी को चंदन लागी होता है, जिसको चंदन यात्रा कहते हैं, उधर वहां पे उड़ीसा में उसको चंदन लागी कहते हैं। ये चंदन लागी उत्सव होता है। और जिस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी में राधा और कृष्ण को घुमा लाते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मदन मोहन जी को रोजाना शाम को पालकी में बिठाकर वो ले जाते हैं नरेंद्र सरोवर, और उस सरोवर में, उस पुष्करणी में भगवान जगन्नाथ जी का नौ विहार होता है। अगर कृष्ण नहीं होते तो ये वृंदावन की लीला है उनके सामने क्यों होता? और जिस प्रकार से हम लोग झूलन यात्रा करते हैं भगवान का, राधा और कृष्ण का झूलन यात्रा होता है, सखियों ने झुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये झूलन यात्रा जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जी का सामने मनाते हैं मदन मोहन जी के विग्रह को लेकर। अगर वो कृष्ण नहीं होते तो ये यात्रा क्यों मनाते? केवल उतना ही नहीं है, भगवान कृष्ण और भगवान कितने अवतार लिए हैं और हरेक जो भगवान की लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी को इस प्रकार से सजाते हैं, उन उत्सवों को पालन किया जाता है। उसके अलावा और एक प्रमाण है जो कि हम लोग रोजाना सुबह और शाम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं। असलियत में ये जगन्नाथ अष्टकम श्री शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। आप लोगों को मालूम रहना चाहिए शंकराचार्य जी जो है वो मायावादी हैं। तो एक मायावादी होके उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रार्थनाओं को लिखे हैं जगन्नाथ अष्टकम, और इन्हीं इसी जगन्नाथ अष्टकम को श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगन्नाथपुरी में उसको उच्चारण करते थे। तो इस जगन्नाथ अष्टकम पूरा ये आठ श्लोक ये प्रमाणित करते हैं कि जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही है, ये प्रमाणित करते हैं ये आठ श्लोक। वैसे सात दिनों में आठ श्लोकों को एक एक दिन करके हम चर्चा करेंगे। आज पहला श्लोक को देखेंगे क्योंकि रोजाना तो पढ़ते हैं। हमेशा हम जो भी चीजों को उच्चारण करते हैं या भजनों में गाते हैं उन चीजों का अगर अर्थ हमें मालूम रहेगा तो उस प्रकार का भाव उस समय आएगा। इसीलिए हमको हर चीज का अर्थ जान रखना चाहिए, खास करके जिस समय जपा करते हैं उस समय भी हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ भी मालूम रहना चाहिए, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। पहला श्लोक, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भी नारी वदन कमला स्वाद मधुपह रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से, ध्यान से श्रवण करिए। कदाचित, कदाचित शब्द का अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभी। कालिंदी तट, कालिंदी यमुना जी का नाम है, मगर ये यमुना जी, यमुना नदी बहुत जगह पर बहती है। जहां पे वृंदावन में एंट्री मारती है और जहां तक रहती है उतने ही जगह को कालिंदी कहते हैं। तो कालिंदी मतलब यमुना नदी का जो हद या जो जितना हद तक वो वृंदावन में बहती है वो कालिंदी, कालिंदी तटे मतलब यमुना कुल में। संगीत करबो, उन्होंने संगीत गान करते हैं। किस प्रकार का संगीत? उनका मुरली ध्वनि या वंशी वादन करते हैं। कभी कभी यमुना नदी के किनारे वंशी वादन करते हैं। मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, उनकी वंशी ध्वनि सुनकर ये सारे जितने गोपांगनाएं हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं या वहां पर आ जाते हैं। उस समय ये जो वंशी बजाने वाले व्यक्ति ये एक भ्रमर की तरह ये गोपियों की मुखार बिंद से मधु को शोषण करे, मतलब ये बंसी बजाते बजाते गोपियों की चेहरे को देख रहे हैं और इनकी बंसी का ध्वनि सुन के गोपियां प्रसन्न हो रही हैं, और गोपियां प्रसन्न होने पर भगवान यानी जो व्यक्ति बंसी बजा रहा है वो प्रसन्न हो रहा है, और प्रसन्न होकर बंसी और अच्छे से बजा रहा है। तो ये कहां हो रहा है? कदाचित कालिंदी तटे, यमुना नदी के किनारे। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित पद, और वो कौन व्यक्ति है जिनके चरण कमलों को रमा, रमा लक्ष्मी जी का एक दूसरा नाम है। शंभू शिव जी, ब्रह्मा ये भौतिक जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा जी, अमरपति, अमरपति अमर मतलब देवता, पति मतलब राजा, देवताओं के जो राजा है अमरपति, अर्चित पदो जिनके चरण कमलों को लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र भी अर्चन या पूजा करते हैं। वो कौन है? जमुना नदी के किनारे बंसी बजाते हैं, गोपियों को आकृष्ट करते हैं, गोपियां आनंद होने पर वो आनंदित होते हैं, जिस प्रकार से कमल फूल के अंदर एक भ्रमर की तरह, और जिनके चरण कमलों को रमा लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता लोग भी पूजा करते हैं, वो कौन है? वो हमारे जगन्नाथ स्वामी, वो जगन्नाथ जी हैं। और वो कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, आप मेरे नयनों की पथ पर आरूढ़ हो जाइए ताकि मैं हमेशा आपका दर्शन कर सकूं। तो ये इससे क्या पता लगता है? ये यमुना के किनारे बंसी बजाने वाले और कौन है? वो श्याम सुंदर कृष्ण है, और ये श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं जगन्नाथ जी। इस प्रकार से पूरा जगन्नाथ अष्टकम इस प्रकार से माधुर्य जगन्नाथ जी की कथाओं को और कृष्ण ही करके प्रतिपादित करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जगन्नाथ जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही जगन्नाथ है। अगर कृष्ण ही जगन्नाथ हैं तो भी प्रश्न उठ सकता है, कृष्ण इस प्रकार से रूप क्यों लिए? कृष्ण का तो कितना सुंदर रूप है, वो त्रिभंगी यानी तीन जगहों पर टेढ़े होकर बंसी को पकड़कर बजाते हैं, सारा संसार को आकृष्ट करते हैं उनके नाम मात्र से ही, मगर इस प्रकार से रूप क्यों लिए कृष्ण? ये भी प्रश्न होता है। इसके ऊपर हमारे अनेकों गौड़ीय आचार्यों ने कुछ कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति है कन्हाई खुंटिया, वो चैतन्य महाप्रभु के संगीत है, उड़ीसा के भक्त, उड़िया एक उड़ीसा के भक्त थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के संगीत है। उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था महाभाव प्रकाश। उस किताब में उन्होंने एक कारण बताया कि ऐसे घटना होने पर जगन्नाथ कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप लिए। और भी कुछ आचार्यों ने इस प्रकार के कुछ और कथाओं को कहते हैं, उसमें से दो कथाओं को बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। हर साल इस कथा को यानी पिछले दो साल से आप लोग सुने गया, बहुत बार इस कथा को आप लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा के समय सुने होंगे, फिर भी क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान की कथाओं को जितनी बार सुनेंगे हमें उतना ही आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, या भगवान की तरफ हमारा जो भक्ति है और प्रेम है वो बढ़ेगा, इसीलिए हम सुनेंगे। भले ही आप लोग पहले से सुने हुए हैं कि, मगर मैं इसको दोहराऊंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। एक बार की कथा इस प्रकार है, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में भगवान वृंदावन में रहने के बाद आप लोग सबको मालूम है अक्रूर जी ने उन्हें मथुरा लेके आ गए। मथुरा लेके आए थे कंस के शोभा यात्रा देखने के लिए, मगर वो वचन देकर आए थे गोपियों को, राधा रानी को, माता यशोदा को, नंद बाबा को कि मैया मैं जरूर वापस आऊंगा। तब इसको मथुरा विरह कहते हैं ब्रज में। भगवान मथुरा आ गए, कंस का खेल खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मगर भगवान आने के बाद ब्रज में कृष्ण विरह में दग्धीभूत हो रहे थे सारे ब्रजवासी। नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीमती राधा रानी और सारे गोपियां वो जो कृष्ण के विरह में दग्धीभूत हो रहे थे। सारा ब्रजवासियों का कार्य क्या हुआ करता था? हमेशा कृष्ण दिन भर अपना हर कार्य करेंगे, मगर हर कार्य के पीछे जो शक्ति प्रदान कार्य क्या था? कृष्ण का था। हमेशा कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के गुणों को, कृष्ण के कारनामों को वो कहते कहते सुनते सुनते अपने दिन भर के कार्य किया करते थे, मगर ये दिन भर उनकी कथाओं को सुनते थे और शाम को कृष्ण वापस आते थे, उनका दर्शन किया करते थे। मगर अभी क्या हुआ? ये कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए, केवल कहकर गए कि मैं वापस आऊंगा, मगर अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो कृष्ण की विरह में सारे ब्रजवासियां दग्धीभूत हो रहे थे, उनके अंदर एक प्रकार का अग्नि का ज्वाला, विरह का ज्वाला वो उनको जलाकर राख करने कर रहा था। सभी लोगों ने कार्य तो कर रहे हैं मगर कार्य करने के पीछे जो शक्ति खत्म हो चुकी थी, जबरदस्ती कर रहे थे, किसी कार्य में रुचि नहीं है, पति को घर चलाने में रुचि नहीं है, पत्नी को घर के कार्यों में रुचि नहीं है, पति पर रुचि नहीं है, माँ को बच्चों पर रुचि नहीं है, गायों को बछड़ों पर रुचि नहीं है, बछड़ों को गायों पर रुचि नहीं है, बछड़े दूध भी नहीं पीते हैं, गोपियों को दूध दोहने में, दही बेचने में और जमुना जी में जल लाने में किसी में रुचि नहीं होता है। सारा वृंदावन सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा कि धूप का मौसम आया है या गर्मी आई है और सारे पत्ते झड़ चुके हैं, सारे फूल झड़ चुके हैं, चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जीवन का जो उत्स है वो खत्म होने जा रहा है। इस प्रकार सा विरह जो है ब्रजवासियों के अंदर सता रहा था। मगर ये विरह एक तरफा नहीं था, क्योंकि प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता है, प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होता है, तभी उसको प्रेम कहा जाता है। इस संसार में सांसारिक जितने भी हमारे मनुष्यों में जीव जंतुओं में जिस प्रेम का झलक को हम लोग देखते हैं, वो प्रेम नहीं है, केवल काम है। आप मेरे बातों को सुनते हो या मेरे इच्छा को पूर्ण करते हो तो आप मेरे हो, अगर आप मेरे इच्छा को पूर्ण नहीं करते हो तो मैं आपका नहीं हूं, आप मेरा नहीं हो। ये हमारा सांसारिक प्रेम है, मगर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। राधा और कृष्ण में ऐसा प्रेम नहीं था, ये दोनों तरफ से था। केवल राधा रानी, केवल यशोदा मैया, केवल नंद बाबा ही विरह में दग्धीभूत नहीं हो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भी इन ब्रजवासियों के विरह में, नंद बाबा के विरह में, यशोदा मैया की याद, उनका उखल में बांधना, उनका डांटना, गोपियों का फटकार, ये सब बार बार याद आ रहा था हमारे कृष्ण को। मगर क्या करें, इस प्रकार सा स्थिति है ना, तो ब्रजवासियां अपने ब्रज को छोड़कर कृष्ण के पास आ पाते हैं, ना ही ये कृष्ण मथुरा को या द्वारका को छोड़ के जा पाते, नहीं आ पा रहे। मगर भक्त लोग कहते हैं और भगवान का भी कहना है, जब तक विरह नहीं है तो प्रेम पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं होता है। इस प्रकार से विरह की दावा, विरह की अनल में कृष्ण भी इधर तड़प रहे थे, जल रहे थे, उधर ब्रजवासी भी जल रहे थे, मगर इस प्रेम को बढ़ाने के लिए और क्या उपाय है, कृष्ण भी नहीं जा पा रहे हैं, गोपियां भी नहीं आ पा रहे हैं, तो एक ही रास्ता बच गया था, वह पत्र, वह प्रेम संवाद भेजना, वह खबर भेजना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उस समय एक ही चारा बच गया था कि खबर भेजा जाए कि कृष्ण चाहते थे कि मैं भी उनके लिए यहां पे तड़प रहा हूं, इस बात को कौन जाके बताएगा उनको, कैसे राधा रानी को पता लगा, कैसा यशोदा मैया को, नंद बाबा को पता लगेगा कि मैं भी उनके विरह में जल रहा हूं, दुखी हूं, मैं भी यहां रह नहीं पा रहा हूं, मगर मैं मजबूर हूं, यहां से नहीं आ पाऊंगा छूटकर, और वो मजबूर है, वहां से नहीं आ पाएंगे। और ये प्रेम की खबर पहुंचाने के लिए एक खास मित्र की आवश्यकता है, ये ऐसी सीक्रेट बातें हैं, और ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता है खबर पहुंचाने के लिए जो कि सबसे अत्यंत विश्वसनीय होना चाहिए, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने एक अपना विश्वसनीय व्यक्ति जो कि मथुरा में, उनको चुने थे। भागवत में कृष्ण कहते हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मोर्जुनिर शंकर न च संकर्षण न श्रीय नैव आत्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं इस संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति मेरा, विश्वसनीय, वो कौन है, केवल उद्धव जी हैं। इसमें वो कहते हैं भगवान, न तथा मे प्रियतम, हे उद्धव तुम सबसे मेरा प्रिय हो, यहां तक भी कितना प्रिय हो, मेरा बेटा मेरे से उत्पन्न हुआ, आत्म योनिर मेरे से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा भी मेरा उतना प्रिय नहीं बन सका। शंकर जो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही एक्सपांशन है, शिव जी, वो भी इतना प्रिय नहीं है मेरा। न च संकर्षणो, शंकर शब्द शिव जी के लिए, और ये संकर्षण कौन है, बलदेव जी हैं। भले ही बलराम मेरा बड़ा भाई है मगर आपसे प्रिय नहीं है बलराम, मैं इन सारे प्रेम कथाओं को मैं बलदेव जी के साथ शेयर नहीं कर सकता, डंडा मारेगा मेरे को, बड़ा भाई है। उनसे नहीं बता सकते ना। श्री श्री भी नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी जी जो कि मेरा प्रेयसी है, मैं उन्हें भी, वो भी मेरा प्रियतमा, मगर फिर भी इतना प्रिय नहीं है, आपके जैसा विश्वसनीय नहीं है। और एक बड़ी बात कहते हैं आगे, नैवार आत्मा च यथा भवान, मेरा स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है जितना आप प्रिय हो। अपना स्वरूप भगवान कहते हैं, मेरा खुद का स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है मेरे लिए जितना है उद्धव आप प्रिय हो। इसलिए आप ही ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेरा इस संवाद को, इस प्रेममयी वार्ताओं को लेके ब्रज में पहुंचा सकते हो। इस प्रकार से भगवान कहकर सबको मालूम है कि भगवान ने उद्धव जी के साथ संदेश भेजे थे। उस समय उद्धव जी को बुलाएं, बाजू में बिठाएं और उनके हाथ को पकड़े और कहने लगे, गच्छो दबा ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नम प्रतिमा वह गोपीनाम मत वियोगाधिम मत संदेशेर विमोचय। हे उद्धव, हे सौम्य, आप ही मेरा प्रियतम हो, क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हो? आप कृपा करके ब्रज में जाओ। गच्छो उद्धवो ब्रजम, हे उद्धव, हे सौम्य, आप कृपा करके ब्रज में जाइए। क्या करेंगे? आप कृपा करके ब्रज में जाइए, मेरा माता यशोदा मैया के पास में बैठकर उनको समझाइए, उनको आश्वासना दीजिए कि मैं आऊंगा जरूर, और मैं भी, वो जितना मेरे विरह में है, दुखी है मेरे अलावा, उतना ही मैं भी दुखी हूं। मेरा इस हृदय की भावनाओं को जाकर बताइए मेरे माता को, मेरे नंद बाबा को जाके बताइए, वो जितना मुझे चाहते हैं मैं भी उतना उनको चाहता हूं, मगर मैं मजबूर हूं, यहां से नहीं निकल पा रहा हूं। और वो कहते हैं, मेरा प्रेयसी राधा रानी को जाके बताइए कि वो जिस प्रकार से मेरे विरह में सब कुछ उसे शून्य दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार से मुझे भी ये संसार शून्य ही दिखाई पड़ रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण मे। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे गोविंद, आपकी विरह का निमिष काल भी युग, एक युग जैसा प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से राधा रानी भी उनका भाव था, और उसी भाव भगवान श्री कृष्ण का भी था कि राधा रानी का एक निमिष काल के विरह में उनको भी एक युग की तरह प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार से कथाओं को बता रहे हैं कि भगवान, हे उद्धव, आप जाइए मेरे कथा को लेकर, मेरे इस प्रेम वार्ता को लेकर जाके ब्रज में बताइए। तो उद्धव गए और ब्रज में जाके बताए होंगे, और वो कहने लगे, मालूम है ये गोपियां कौन है? भगवत गीता में जो कुछ भी सब मैं उपदेश दिया हूं, असलियत में भगवत गीता के सारे श्लोकों का मूर्तिमान स्वरूप है ये गोपियां और ये श्रीमती राधा रानी। भगवत गीता में कह दिया, मन मना भव मत भक्त मध्याजी माम नस्कुरु, मगर ये श्लोक श्लोक ही रह गया भगवत गीता में, मगर ये जो गोपियां हैं ये भगवत गीता के श्लोक का मूर्तिमान स्वरूप है। ये गोपियां मन मना भव मद मेरा भजन करते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, मेरा अर्चन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। हे उद्धव, इन्होंने अपना सारे लौकिक धार्मिक और सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरे लिए वो आ चुके थे। जिस समय ब्रज में मैं हुआ करता था, उस समय केवल मेरा एक बांसुरी का धुन अगर उनके कर्ण रंध्र में कहीं पहुंच जाता था, तो एक नारी के लिए अपने घर की दरवाजा को पार करके जाना उसकी मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर कोई नारी अपने घर की दरवाजा उल्लंघन करके जाती है तो उसको सीधा वेश्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, मगर इतना बड़ा सामाजिक कलंक को भी गोपियों ने भ्रक्षेप नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि मेरा क्या इज्जत रह जाएगा संसार में। इस प्रकार से उन्होंने अपना पति, बच्चे, सास ससुर, सारे सामाजिक बंधनों को छोड़कर मेरे लिए वो अपना सब कुछ अर्पण कर दिए थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य का यही रूप है, भगवान कहते हैं ये गोपियां हैं कि इस लाइन को प्रतिपादित करते हैं कि सब कुछ छोड़कर उन्होंने मेरे शरण में आ गए थे और इस प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसको उस प्रकार से रेस्पॉन्स करता हूँ। तो ये गोपियां सब कुछ छोड़कर आए थे मेरे लिए, तो मैं भी उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हे उद्धव, आप इन लोगों की, इन गोपियों की गारिमा को, महत्व को आप नहीं समझ पाएंगे। आप जाइए, जाकर उन्हें बताइए कि मैं भी उनके लिए उतना ही विरह में दग्धीभूत हूं। इस प्रकार से कहते कहते भगवान की कमल नयनों में से दो बूंद अश्रु जो है वो टपक गया और इस अश्रु को देखकर उद्धव रह नहीं पाए, वो भी दुख में विभोर हो गए। आहा, वो व्यक्ति रो रहा है जो व्यक्ति इस संसार की हरेक रोदनकारी व्यक्ति का, यानी हरेक शोक युक्त व्यक्ति का शोक हरने वाला है। वो व्यक्ति रो रहा है जो शोकातितेर श्लोक, शोकातितेर मतलब जो व्यक्ति ये हर्ष और शोक से परे हैं, इस संसार की सुख और दुख से परे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, मगर वो व्यक्ति दुख व्यक्त कर रहा है, उनके आंखों से आंसू आ रहा है। पूर्णानंदेर विलाप, पूर्णानंद का मतलब है जो व्यक्ति अपने आप में आनंदित है, वो आत्मा राम है, वो अपने आप में पूर्ण है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं, वो सब उनसे निकला हुआ चीज भी पूर्ण है। इतना पूर्ण होकर भी वो किसी व्यक्ति के लिए अगर रो रहा है, इतना विलाप कर रहा है, तो मैं किस प्रकार से इन गोपियां और ब्रजवासियों की महिमा को जान सकता हूँ। मेरे लिए तो असंभव जैसी बात है कि मैं इनकी महिमा को नहीं जान सकता हूँ गोपियों की। तो ऐसी गोपियां इसको देख के वो भी चकित हो गए। ये एक अत्यंत मनोहर दृश्य है, क्या है, भक्त भगवान के विरह में है और उसी समय भगवान भी भक्त के विरह में है, इसे कहते हैं प्रेम। इस प्रकार के दृश्य को देखे थे उद्धव जी ने, तो उन्होंने गए और इस प्रकार का जो रूप है राधा रानी के विरह का जो रूप, वो जगन्नाथ जी हैं। आगे जाके देखेंगे किस प्रकार से जगन्नाथ जी का रूप में परिवर्तन होते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जगन्नाथ जी का रूप कुछ नहीं है, कृष्ण ही राधा विरह विदुर, भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी के विरह में इस विदुर का, विरह विदुर का रूप लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से कहे, ये वार्ता जाके दे के भी आए थे उद्धव, मगर वो हमेशा खोए खोए हुए से रहते थे। एक बार वो ब्रज के ही चिंतन में रहते रहते उन्होंने क्या किए, एक बार उन्होंने ब्रज की चिंतन में रहते गंभीर चिंता करते करते वो भगवान श्री कृष्ण बेहोश हो गए ब्रज की चिंतन में। और उसी समय अच्छा हुआ कि उद्धव जी वहां पहुंच गए और नारद मुनि वहां पहुंच गए। भगवान की इस प्रकार की स्थिति को देखकर उद्धव जी और नारद जी डर गए, ये क्या, ये कौन सा अद्भुत लीला है भगवान का, भगवान अचेत होना, बेहोश हो जाना, ये जो बड़े भक्त होते हैं भगवान को, उनको मालूम रहता है अगर भगवान इस प्रकार से कुछ लीलाएं कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ एक अत्यंत गुह्य रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं, ये तो मालूम है, मगर अभी की परिस्थिति को संभालना पड़ेगा हमको, यह सोचे। तब तक बलदेव जी भी वहां आके पहुंचे, वो सोचे अगर भगवान उठाना है, कृष्ण को उठाना, तो एक ही रास्ता है कि ब्रज का गुणगान करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रज की महिमा भगवान की कर्ण रंध्रों में पहुंचेगा तो तब भगवान उठ खड़े हो जाएंगे। मगर बलदेव जी बोले नहीं, ये कैसे कर सकते हैं। उद्धव जी भी मना किए, क्यों, अभी ब्रज में जो स्थिति है अगर हम उनको जगा देंगे तो ये उठ के सीधा चलेंगे वृंदावन, और जाके अगर वृंदावन में पहुंच गए, वृंदावन में अभी की स्थिति देखकर वो वहां पे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण के विरह में पूरा वृंदावन सूखा पड़ गया था, सारे ब्रजवासियों में कृष्ण के विरह में अपना खान पान छोड़कर वो एकदम से जीर्ण शीर्ण हो गए थे, कोई कार्य में किसी का मन नहीं था, सभी के आंखों में आंसू था, सारे गोप नारियां और सारे गोपों के आंखों में आंसू था, राधा रानी इतना जीर्ण शीर्ण हो गई थी कि वो अपने कुंज में सखियों के साथ केवल लेटी हुई थी, केवल उनका सांस चल रहा था, बस उतना ही, उनका प्राण नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा था राधा रानी का परिस्थिति। अगर ये सब ब्रज में देखेंगे कृष्ण जाके, तो कृष्ण इसको सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें कृष्ण को अभी जगाना नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सब लोगों ने सोचे कि हम किसी को तो जिम्मेदारी लेना चाहिए, कृष्ण आने से पहले ब्रज में जाकर कहना चाहिए कि कृष्ण आ रहा है। तो जैसे ब्रजवासी कृष्ण आ रहा है करके सुनेंगे, सभी लोगों के अंदर एक प्रकार का करंट लगेगा और सब लोग एकदम से उत्साह से अपना कार्यान्वित हो जाएंगे, यानी कार्य करने लग जाएंगे और प्रफुल्लित होकर, क्योंकि केवल कृष्ण आ रहा है सुनकर। और तब अगर कृष्ण जाएंगे तो कृष्ण को कुछ फर्क नहीं होगा। तो जाएगा कौन? उद्धव को बोले नारद जी, हे उद्धव आप जाइए। उद्धव जी बोले, मैं आपके वचनों को रक्षा करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या करूं, आपको मालूम है एक बार भगवान मुझे भेजे थे और मैं जाके उनको बहुत समझाया, उल्टी मेरे को समझा दिया उन लोगों ने, और मैं उनको क्या समझाऊंगा। और मैं उन लोगों को आश्वासन देके आया कि आप लोग चिंता मत करो, अभी कृष्ण आएंगे, और इतना साल हो गया अभी तो गए नहीं, अभी मैं दोबारा जाके बोलूंगा कृष्ण आ रहा है, वो सुनेंगे? हाँ नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे मेरी बातों को। बलदेव की तरफ देखे नारद मुनि, बलदेव जी बोले, हे प्रभु मैं आपको इस दृष्टि को समझ सकता हूँ, मगर मैं लाचार हूँ, मैं भी एक बार गया था मेरा भाई का बात सुन के, मेरे को भी एक बार भेजा था कि जाके बोल के आ, मैं आ रहा हूं करके, और मैं गया, यशोदा मैया को समझाया, नंद बाबा को समझाया, गोपी गोपालुन सबको समझाया, और मैं कहा था कृष्ण अभी आ रहा है तुरंत, और आके इसको भेज रहा हूँ कभी से भेज रहा हूँ, जा ही नहीं रहा है, और अभी तो गया नहीं, अगर दोबारा जाके बोलूंगा कि कृष्ण आएगा, मेरे बातों को भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये सुनकर सभी लोग और रोने लगे, बलदेव जी भी रोने लगे। तो क्या उपाय है? तब तक सुभद्रा मैया वहां पर पहुंची, और वहां पहुंचकर वो कहने लगी कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। पहली बात है कि मैं एक नारी हूं और मैं अभी तक गई नहीं ब्रज में, मैं जाऊंगी यशोदा मैया की गोद में बैठूंगी और मैं उनको समझा के कहूंगी कि अभी भैया कृष्ण आ रहा है, और यशोदा मैया मेरी बात को सुनेगी, और मैं राधा रानी के पास जाऊंगी, उनको भी बताऊंगी। इस प्रकार से कहते हुए यशोदा मैया तैयार हो गई। तभी नारद मुनि के आदेश से यशोदा मैया के लिए रथ बनाया गया कि दौड़ के जाए वहां पर द्वारका से मथुरा ब्रज में वृंदावन। मगर अभी सुभद्रा मैया अकेली है और बहन का हिफाजत करना भाइयों का कर्तव्य है। तो बलदेव जी बोले कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, भले ही सामने जाऊंगा तो मुझे कोई सुनेगा नहीं। तो बलदेव जी के लिए एक स्वर्ण रथ बनाया गया और एक रथ तैयार रखा गया भगवान कृष्ण के साथ, और सुभद्रा मैया बलदेव जी को भेजा गया शुरुआत में, और उन दोनों ने गए ब्रज में। और वो जैसे ही ब्रज के लिए निकल गए, नारद मुनि ने अपना वीणा बजाते हुए वृंदावन के गुणगान करने लगे, गोपियों की लीलाओं का वर्णन करने लगे, गोपियों की कथाओं को सुनाने लगे। और जैसे ही गोपी शब्द भगवान कृष्ण के कर्णों में पहुंचा और तुरंत खड़े हो गए, और खड़े होके त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो गए, जैसे कि भगवान कृष्ण देखते हैं कि वो तीन जगहों पे टेढ़े रहते हैं, इस प्रकार से तीन जगहों पे टेढ़े होके खड़े हो गए। खड़े होके देखे किधर है, बंसी नहीं है, मेरा बांसुरी किधर है, चिल्लाने लगे। वो मुझे मालूम है ये सारा नाटक राधा का और वो गोपियों का है, उन्होंने ही मेरे बंसी को चुरा ली है, किधर है ये गोपियां, किधर है वो राधा, मेरे बंसी को चुरा ली है, चोर है ये लोग। और वो इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, क्यों? क्योंकि वो इसी भाव में बेहोश हुए थे, वो राधा और ये ब्रज की कथाओं को स्मरण करते करते ही वो बेहोश हुए थे। और ढूंढते ढूंढते सामने उद्धव नारद मुनि मिले। कृष्ण बोले, अरे नारद आप ब्रज में क्या कर रहे हो? बोले ठीक है तुम बाजू, मेरा बंश बांसुरी ढूंढने लगे। और बांसुरी ढूंढते ढूंढते उद्धव जी सामने मिल गए। बोले कि उद्धव तुम ब्रज में क्या कर रहे हो, द्वारका मथुरा छोड़कर आप ब्रज में कैसे आ गए, क्या मैं ब्रज में हूं कि नहीं? फिर शंका हुआ भगवान अपने ऊपर, फिर वो अपने पूर्ण चेतना में आए, फिर वो देखने लगे असलियत में मैं ब्रज में नहीं हूं, मैं द्वारका हूं, ये उद्धव के सामने और नारद मुनि के सामने। तब नारद मुनि और उद्धव जी बताएं कि हे भगवान असलियत में आप यहीं पे हैं, और आपको जाने के लिए हमने एक रथ तैयार रखे हैं कि आप ब्रज में पहुंच सके। ये बात सुनते ही भगवान जो है रथ में जाने के लिए तैयार हो गए, मगर उस समय इतने भावावेश में थे और ये अष्ट सात्विक विकार होने के कारण वो अपने आप को भी बस में नहीं रख पाते थे, इसीलिए नारद मुनि और उद्धव जी जो है भगवान को पकड़कर धीरे धीरे से दोलाते हुए मान लीजिए कि कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति हो, नशा हो गया हो, क्योंकि इतना भाव बेस में थे कि वो जा भी नहीं पा रहे थे, अपने आप से चल भी नहीं पा रहे थे। तो उद्धव जी और नारद मुनि उनको पकड़कर दोहला दोहला कर वो लेके जा रहे। ये जो दृश्य है जगन्नाथ मंदिर से रथ तक जो जगन्नाथ जी को लिया जाता है, जो पहंडी विजय कहते हैं, इस भाव में जगन्नाथ जी रथ में जाते हैं कि राधा रानी को मिलने के, इतना भाव विहोर है कि उनको दोहला दोहला कर ली जाती है और लेकर रथ में बिठाए। और दारू को जो कि उनके चैरिएटर है, उनके जो रथ चालक है, उनको गाड़ी चलाने के लिए बोले और इतना तेज गति से उन्होंने गाड़ी चलाया और जाके ब्रज में पहुंचे। जब ये ब्रज में पहुंचे उस समय ब्रज का क्या हालत था देखिए। ब्रज में जब ही बलदेव और सुभद्रा मैया जाके पहुंचे, ब्रज का इस प्रकार की स्थिति को देखकर वो एकदम से काष्ठ जैसा, मतलब लकड़ी जैसा स्तंभीभूत हो गए। सभी लोगों ने कृष्ण के विरह में कोई काम काज नहीं कर रहे हैं, राधा रानी वहां पर कुंज में पड़ी हुई है, अष्ट सखी उनके बाजू में बैठे हुए हैं, यशोदा मैया के आंखों से पानी का धारा, जैसे कि गंगा नदी में धारा कभी सूखता नहीं है, यशोदा मैया के आंखों से धारा कभी नहीं सूख रही है, इतना अश्रु गिर रहा है। नंद बाबा भी एकदम से जैसे कि जीर्ण शीर्ण हो गए बैठे हुए हैं, कोई कुछ कार्य। इस प्रकार की ब्रज की दृश्य को देख के बलदेव जी और सुभद्रा मैया भी आश्चर्यचकित हो गए और बलदेव के अंदर भी ये जो कृष्ण प्रेम से प्राप्त होने वाले जो अष्ट सात्विक विकार हैं, कंप स्वेद विवर्ण अश्रु स्वेद इत्यादि लगा, क्योंकि भगवान में उनका नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है या देह और देही में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके अंदर जो सारा भाव प्रकट हो रहा था वो उनके शरीर में दिखाई पड़ने लगा। आप शायद इस बात को नहीं समझ, उसको ऐसा समझना चाहिए, हम यहाँ पे हमारा जो भाव है वो बाहर प्रकट नहीं होता है, क्यों, हम अलग हैं और ये हमारा शरीर अलग है, हम आत्मा है इस शरीर में रहते हैं, मगर भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देह और देही में कोई अंतर नहीं है, वही व्यक्ति है, इसलिए उनके भाव उनके शरीर के द्वारा प्रकट हो रहा था। ये अष्ट सात्विक विकार जो है उनके शरीर में ऐसा प्रकट हुआ कि उनका आंख बड़े हो गए, मुंह बड़ा हो गया, हाथ और पैर जो है कछुए की तरह अंदर चले गए, और ये जो इस प्रकार की महाभाव प्रकाश महाभाव का जो रूप है वहां पे प्रकाशित हुआ बलदेव जी का और सुभद्रा मैया का, और दोनों वैसे के वैसे रथ के ऊपर ही खड़े हैं महाभाव में, बड़े बड़े आंखों से देखते ही रह गए, कुछ बोल भी नहीं पा रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे, उनको बोले भी नहीं जाके कृष्ण आ रहा है करके, वो देख के खुद ही इतना आश्चर्यचकित खड़े हैं बलदेव जी और सुभद्रा, यही रूप है, ये बलदेव जी का जो रूप है कि वो ब्रज के इस प्रकार के भाव को देख के एकदम से आश्चर्य होकर खड़े हैं दोनों भाई बहन। तब तक जाके भगवान की रथ जो है वो जाकर पहुंचा ब्रज में जाकर ये रथ तभी पहुंचा, और जैसे ही ब्रज में भगवान का रथ पहुंचा, कृष्ण तुरंत ही रथ से छलांग लगाए और जाके सीधा पहुंचे राधा रानी के कुंज में। राधा रानी तभी निधु वन में थी, और राधा रानी का स्थिति किस प्रकार से था, निधु वन में अक्षियां बैठी हुई हैं, ललिता के गोद में राधा रानी का सिर है, और एकदम से जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा ललिता के गोद में है और बाकी पड़ी हुई है, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रही है, इतना भी पता नहीं लग रहा है शरीर से कि वो सांस भी ले रही है क्या नहीं। सबको ये मालूम हो चुका कि राधा रानी अभी शरीर नहीं रहेगी या वो शरीर छोड़ने वाली है, इतना उन लोगों ने सोच लिया कि अभी राधा रानी जो है मृत अवस्था में। उसको कहते हैं महाभाव ही नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा मई महाभाव में थे, मगर राधा रानी जो स्तर में थी उसको कहते हैं अधिरूढ़ महाभाव, इस महाभाव से भी और आरूढ़ हो चुकी थी और ऊंचा स्तर में गई थी। यह अधिरूढ़ महाभाव को ये मृत्यु अवस्था की समान है, यानी एक व्यक्ति मर जाने पर जैसे ही पड़ा रहेगा यह अधिरूढ़ महाभाव में वैसा व्यक्ति पड़ा रहता है। तो राधा रानी इस भाव में पड़ी हुई थी, क्योंकि ये सखियों का डर था, तो ये सखियां क्या कर रही थी कि कभी कभी थोड़ा सा कटन ला के उनके नाक के पास रख के चेक करती थी, क्या कापूस वो नाक के पास रखती थी राधा रानी का कि सांस ले रही कि नहीं राधा रानी, और वो बेहोश पड़ी थी। असलियत में कृष्ण के विरह में ये जो ब्रजवासी बार बार बेहोश जाते थे, असलियत में बहुत देर तक बेहोश जाते थे, और ये एक ही वजह है कि उनका जीवित रहना। जितना बेहोश जाते थे उतना वो जीवित रहते थे, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तो मर जाएंगे। बेहोश जाने पर उनका शरीर में आत्मा रहता था, प्राण रहता था। भक्तों का कहना है, महाराज का कहना है कि ये बेहोश अवस्था ही उनको बचा के रखा है। बेहोश है इसलिए जीवित है, इस स्थिति में है। इस प्रकार से ब्रजवासी कृष्ण विरह में थे, जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में, रूप गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में अगर तालाब सूख जाता है तो उस समय जितने भी कछुए तालाब में रहते हैं, वो कछुए जो है पानी में रहने वाले जीव है ना, तो पानी सूख जाने के बाद वो सब क्या करते हैं, पंख पंख जो है ना, कीचड़ कीचड़ के अंदर अपने आप को छुपाने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से ये जो रूप गोस्वामी कहते हैं, ये जो गोपियों का हृदय है ये एक तालाब जैसा है। अभी ये तालाब सूख चुका है कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह का अग्नि से, और ये गोपियों का जो प्राण है ये कछुआ जैसा है, और ये कछुआ अभी कहां छुपने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको कीचड़ चाहिए, पंख चाहिए। और वो पंख क्या मालूम है, क्योंकि कृष्ण जब भी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तभी एक शब्द बोले थे, वो बोले थे कि मैं जरूर आऊंगा। ये जो आशा है कि कृष्ण आएंगे करके, ये आशा ही पंख है, कि अभी तक आशा भरी हुई है कि मेरा कान्हा कहकर गया था कि वो आएगा जरूर, और ये आशा रूपी कीचड़ के अंदर ये कछुआ रूपी गोपियों का प्राण छुपा हुआ है, ये रूप गोस्वामी कहते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ में कछुआ छुप जाता है, उस प्रकार से गोपियों का प्राण कृष्ण आएंगे करके वो आशा के अंदर छिपा हुआ है। अगर वो आशा नहीं रहता तो भी वो कभी से ये गोपियों का प्राण निकल जाता शरीर से, ऐसे पड़ी हुई थी राधा रानी। तब तक कृष्ण आए, और कृष्ण वहां पर आए, कृष्ण वहां पर आकर निधुवन में पहुंचे, और जैसे ही निधुवन में पहुंचे उन्होंने श्रीमद राधा रानी का इस प्रकार की रूप को उन्होंने देखे, और राधा रानी का इस प्रकार का रूप को देख के ही वो एकदम से, जैसे ही उतरे ब्रज में, ब्रज का स्पर्श किए और वो चिल्लाने लगे, राधा राधा राधे आप कहां पर हो। तो महाराज ने बताते हैं कि उन्होंने इतने राधा रानी के विरह में निम्बजित थे भगवान श्री कृष्ण, राधे देही पद पल्लव मुदारम, इस प्रकार से वो कहने लगे, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम ज्वलति मई दारुण मदन मनानलो हरतु तदुपाहित विकारम प्रिये चारुशीले राधे चारुशीले देही पद पल्लवम मुदारम देही पद पल्लवम मुदारम। इस प्रकार से वो प्रार्थना करके, हे राधे आप कहां हो, आप कृपा करके आपके चरण कमलों को मेरा सिर के ऊपर रखिए ताकि मैं इस प्रकार की विरह दाबानल से बच सकूं, इस प्रकार से कहकर भगवान श्री कृष्ण उसी ब्रज भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए। और ये खबर ललिता ने धीरे से राधा रानी के कान में कहने लगे कि हे राधे कृष्ण आए हैं। और इस शब्द के साथ साथ वहां पर ये वृंदा यमुना नदी से जो समीर बह रहा था, जो हवा बह रहा था, वो कृष्ण को शरीर को स्पर्श करते हुए राधा के शरीर को स्पर्श किया, और ये जो हवा था कृष्ण के शरीर से स्पर्श करते हुए राधा के शरीर को स्पर्श किया, वो एक प्रकार की संजीवनी जैसा कार्य किया। संजीवनी का मतलब आप जानते होंगे, वो जीवन दान देने वाला चीज होता है। तो राधा रानी का जीवन नहीं था, प्राण नहीं था, जैसे ही ये हवा कृष्ण को स्पर्श करते हुए आके श्रीमती राधा रानी को स्पर्श किया, और इस हवा के द्वारा श्रीमती राधा रानी के अंदर जीवन न्यास हुआ, ये संजीवनी प्राप्त हुआ, और श्री जी ने आंखें खोली और वो देखी कहां है मेरा कृष्ण, और ललिता को पूछी कहां है मेरा कृष्ण, और वो उठ के देखी, तब तक भगवान श्री कृष्ण राधा के विरह में इतना विरही हुए थे कि ये राधा विरह रूपी सागर में एकदम से निमज्जित हो गए थे कि वो राधा की इस प्रकार की रूप को देखते 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 उनका आंख बड़े बड़े होने लगे और एकदम से आंख बड़ा हो गया, एकदम से आंख बड़ा हो गया, एकदम बड़े बड़े आंखों से राधा को इसी रूप को देख रहे थे, मेरा राधा किस रूप में है, किस स्थिति में है। और उनको उनके अंदर इस प्रकार की महाभाव प्रकाश हुआ कि उनके सारा हाथ और पैर अंदर जाने लगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को अंदर ले जाती है उस प्रकार से भगवान की हाथ पैर जो है वो छोटे छोटे हो गए। और बड़े बड़े नेत्रों से श्रीमती राधा रानी का इस विरह रूपी सागर का आस्वादन करने लगे। और ये जो रूप है वो जगन्नाथ है, ये राधा विरह जो रूप है वही जगन्नाथ है। वहां पे ब्रज की विरह में बलदेव जी और सुभद्रा मैया हैं और यहाँ पे राधा रानी के विरह में राधा रानी को देखते ही रह गए कृष्ण की इस प्रकार से बड़े बड़े नेत्रों से अभी भी देख रहे हैं राधा को। ये जो रूप है जगन्नाथ जी का है, असलियत में जगन्नाथ जी राधा विरह विदुर राधा रानी के विरह में है। और इस प्रकार की भगवान की स्थिति, असलियत में ये कथा इसलिए बताए कि ये हम जानना चाहते क्यों इस प्रकार का रूप हुआ भगवान का। तो ये उनके पीछे रहस्य है कि उन लोगों ने ब्रज की विरह में इतना विभोर हो गए थे कि आंखें बड़े बड़े हो गए, हाथ छोटे छोटे हो गए, सब अंदर चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, असलियत में उसके बाद राधा रानी उठी, विशाखा को कहने लगी कि हे विशाखा क्या आप कृपा करके मेरे श्याम सुंदर को मदद करोगे। विशाखा को मालूम था कि श्याम सुंदर के इस प्रकार की स्थिति के लिए दवाई क्या है। वो जाके श्याम सुंदर के कान में कहने लगी, राधा मंत्र का उच्चारण करने लगी, राधा रानी का नाम उच्चारण करने लगी। और राधा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और फिर राधा रानी को देखे और राधा रानी उनको फिर बाद में कहां और कहां विरह, कोई विरह नहीं, कहां द्वारका, कोई द्वारका नहीं, कहां राजा, कोई राजा नहीं। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की। अगर आप लोग धैर्य के साथ सुनना चाहेंगे तो 9:15 तक हम कहेंगे, क्योंकि असलियत में समय 7:45 से 9:15 तक है। तो आप लोग कृपा करके थोड़ा धैर्य के साथ बैठना चाहिए। तो वहां पे और कहीं भीड़ नहीं है, सब कुछ मिलन समारोह होने का, राधा और कृष्ण जो है, राधा और कृष्ण जो है उनका मिलन समारोह सारे सखियां मनाने लगे। और कृष्ण राधा रानी को कहने लगे, हे राधा, हे राधे, असलियत में हमारा वियोग है ही नहीं, मैं कभी भी ब्रज छोड़ के नहीं जाता हूँ। असलियत में आपका ये जो प्रेम है मेरे प्रति, इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं इस विरह का रूप लिया था। और यही विरह का जो मेरा रूप है, ये रूप ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ के रूप में रहेगा और हमेशा मैं आपके विरह में रहूंगा। आपका विरह जो है, आपका प्रेम जो है एक सागर के बराबर है, मैं देखना चाहता हूँ वो सागर कितना बड़ा है। और उस सागर में मैं एक लकड़ी के जैसा तैरना चाहता हूं। राधा विरह एक समुन्दर है, एक सागर है, उस राधा विरह की सागर में भगवान श्री कृष्ण एक लकड़ी बनकर, एक दारू बनकर उसमें तैर रहे हैं। वही राधा विरह विदुर श्री जगन्नाथ हैं, जो कि दारू ब्रह्म के रूप में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यमान है। और वो कहने लगे, मैं अकेला ही नहीं रहूंगा इस ब्रज के भाव में, मेरे जैसा मेरा भाई और मेरा बहन का भी वैसे ही स्थिति हुआ है, मैं उन दोनों को लेके आपकी विरह के इस रूप में मैं श्री क्षेत्र पुरी में निवास करूंगा और सब लोगों को बताऊंगा कि आपका प्रेम के लिए मैं कितना प्यासा हूं। और फिर से मैं आपका भाव लेके प्रकट होऊंगा जगन्नाथपुरी के नजदीक और श्री चैतन्य के रूप में, और जब श्री चैतन्य के रूप में आपके भाव के साथ में आऊंगा तभी श्री मैं ही रहूंगा, मगर वो आपके भाव को लिया हुआ रहूंगा राधा रानी के रूप में, राधा रानी के रूप, और मैं खुद ही आपके विरह में रहूंगा। और उस समय फिर से हम दोनों का मिलन होगा, आपका भाव और मैं खुद। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है राधा विरह विदुर जगन्नाथ जी के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यमान है और वही श्री कृष्ण राधा भाव लेकर कृष्ण विरह विदुर के रूप में माया नवद्वीप में उदय हुए और वहां से वो आए जगन्नाथपुरी। और जैसे जगन्नाथपुरी में आके प्रथम दर्शन में ही उन दोनों का, ये कृष्ण विरह विदुर और ये राधा विरह विदुर की मिलन हुआ था, जिस प्रकार से ब्रज में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था, और यही वो जगन्नाथ जी है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी का रूप लिए थे। कन्हाई तो उसके बाद क्या हुआ, सारे गोपियों ने मिलकर, सारे सखियों ने मिलकर राधा और कृष्ण का रत्न सिंहासन पर बिठाए और उनका आरती करने लगे। वृंदावन का गुणगान करने लगे और राधा कृष्ण का गुणगान करने लगे। इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी जो है अपना महाभाव को प्रकाश किए थे। इसके साथ साथ और एक कथा को बताते, और एक बार भी भगवान जगन कृष्ण बलराम और सुभद्रा इस प्रकार के महाभाव को प्रकाश किए थे। क्योंकि मैं इन कथाओं को अत्यंत संक्षेप रूप में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है अगर आज उन कथा को अटका के रखूंगा कि फिर आगे जो है खत्म नहीं हो रहा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इसलिए ये कथा को भी थोड़ा सा संक्षेप में आज बता दूंगा, क्योंकि ये लंबा हो चुका। एक बार की कथा आप लोगों को मालूम रहेगा, हमेशा द्वारका में भगवान कृष्ण 16,100 पाटरानी होते हुए भी उन्होंने क्या करते थे, हमेशा राधा और यशोदा मैया के विरह में चिल्ला उठते थे, राधे राधे यशोदा मैया मैया चिल्ला देते। और रुक्मणी जी और उनके अष्ट सखियों को उनको सहन नहीं होता था, क्या हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं फिर भी कौन राधा राधा चिल्लाते रहते हैं, भगवान असलियत में कौन है, ये राधा कौन है, वो यशोदा मैया हम जानना चाहते हैं, और हम वो क्यों भगवान इस प्रकार से भाव विहर रहते हैं। तो भगवान को पूछे कि भगवान आप क्यों इस प्रकार से राधा करके बुला रहे हैं और गोपी गोपी करके चिल्ला रहे हैं, असलियत में ये क्या है ये विषय। भगवान बोले कि मुझे नहीं, मेरे रोहिणी मैया को पूछिए, वो बताएगी। कहके दोनों भाई सुधर्मा सभा के लिए चले गए। जाने के बाद सारे रानियां इकट्ठा होकर रोहिणी माता को पूछने लगे कि माता कृष्ण क्यों गोपी गोपी करके हमेशा अन्य मनस्क रहते हैं और राधा राधा करके कहते रहते हैं, ये राधा है कौन, गोपी है कौन, हमें जानना है। रोहिणी माता कहने लगी असलियत में ये कथा मैं भी इच्छुक हूं बताने के लिए, मगर समस्या है ये कथा अगर कृष्ण बलराम सुनेंगे इसी समय ये द्वारका छोड़कर मथुरा चले ब्रज में चले जाएंगे, ये कथा ऐसी है, इसलिए ये एक गुप्त स्थान में हमें सुनना चाहिए। इस बात पे सभी रानियां उन्हें राजी हो गई। एक उनके जो अंत रानियों का जगह होता है वहां पर गए, उसके अंदर रोहिणी माता के नेतृत्व में सारे 16,108 पर रानियां बैठकर वो कृष्ण की कथाओं को सुनने लगी। कृष्ण की कथाओं को सुनते समय रोहिणी मैया ने बोला कि असलियत में कृष्ण कथाएं बताऊंगा, मगर एक शर्त है, गेट के पास किसी को खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये कृष्ण बलराम कभी भी आएंगे, अगर एक बार आके इन कथाओं को अगर सुने, उन्होंने अगर सुन लेंगे तो ये मथुरा छोड़कर या द्वारका छोड़कर उन्होंने ब्रज में चले जाएंगे। तो सभी लोगों ने सोचे कहां किसको रखेंगे, कोई रानी जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कृष्ण की कथाओं को सुनने का सबका इच्छा है, जैसे आप लोगों का समय हो गया फिर भी नहीं जा रहे हो सुनने के लिए बैठे हो, इसी प्रकार का भी रानियां हैं, और उनका पति किसी और के बारे में सोच रहा है तो वो कैसे बिना सुने जा सकते हैं। तो सभी लोगों ने सुभद्रा मैया को नियुक्त किया। अभी बिचारी छोटी है सबसे, और सभी भाभी लोग हैं और ये माता हैं, इनके बात को रखना पड़ेगा। बिचारी छोटी कुछ नहीं कह पाई और जाके गेट के पास खड़े हो गई दोनों भाइयों को अटकाने के लिए, और वो दोनों हाथों को फैलाकर वहां खड़े हो गई, जाने नहीं दूंगी दोनों भाइयों को। खड़े होने के बाद ये जो यशोदा मैया है, रोहिणी मैया है, उन्होंने वृंदावन की कथाओं को शुरू किया। पहले उन्होंने वृंदावन की गुणगान किया, वो इस प्रकार से गुणगान किए। महाराज कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, गाइए सब लोग, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीर कुसुम सरोवर मानस गंगा कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा बंशीवट गोकुल धीर समीर वृंदावन तरु लतिका वनीर खग मृग कुल मलय बतास मयूर भ्रमर मुरली विलास वेणु शंख पद्म चिन्ह मेघमाल बसंत शंख शंख करताल युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलास उद्दीपक मानी ए सब छोड़ त कहीं नहीं जाऊं, ऐसा बचोड़ तो पराण हराऊं, चंपक बकुल कदम्ब तमाल माधवी मालती कुंज विशाल भक्ति विनोद कहे सुन कान तू याऊ दीपक हमार पराण राधा कुंड तट कुंज कुटीर। इस प्रकार से रोहिणी मैया ने पहले वृंदावन का गुणगान करने लगी। वृंदावन की इस सुंदर दृश्य को पहले रानियों को बताने लगी। केवल वृंदावन की दृश्य सुनते ही सारे रानियां आचंभित रह गए और वो फिर से कंपेयर करने लगी वृंदावन को और द्वारका को। द्वारका में क्या है, आप लोग क्या देख रहे हो, रानियों को पूछी। ये द्वारका में केवल ब्राह्मणों का बड़े बड़े स्तुतियों का गान सुन रहे हो, वेद स्तुतियों को एकदम कर्कश स्वर से ब्राह्मण लोग बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से चार वेदों को गा रहे हैं। मगर ब्रज गोपांगनाओं की भर्सना, यहाँ पे भगवान की स्तुति हो रही है मगर ब्रज में क्या होता है, स्तुति नहीं। ये सारे गोपांगनाओं ने उनको तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं चोर और विभिन्न प्रकार की गालियों से भगवान को भर्सना करते हैं। यहाँ पे द्वारका में दिखाई पड़ते हैं बड़े बड़े महल प्रासाद राजसभा, ये सब दिखाई पड़ता है मगर वृंदावन में ये सब नहीं है। वृंदावन क्या है, बहुत पेड़ पौधे हैं, कुंज लताएं हैं। ये ब्रज की राजा कहाँ रहता है, कुंज की लताओं में अपने रानी के साथ रहता है। मगर यहाँ पे तुम लोगों के साथ ये राजा कहाँ रहता है, महलों में रहता है। यहाँ पे जैसे ही राजा आएगा तो बहुत सारे तुरी बजता है, नागड़ा बजता है, एकदम धूमधड़ाका होके पूरा कान फट जाता है। मगर ब्रज में ये सब नहीं है, ब्रज में ब्रजराज की मुरली ध्वनि है, वो इतना सुंदर बजता है कि सारे पशु पक्षी भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पे राजा आता है तो सब लोग कान बंद कर देते हैं कि अभी राजा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा बजने लग जाता है तुरी भेरी इत्यादि। मगर वहां पे गोकुल का राजा आता है तो उसका बांसुरी का ध्वनि सुनाई पड़ता है, तो सारे पशु पक्षी भी आकर्षित होकर उनके सामने आ जाते हैं। और यहाँ पे द्वारकापुरी जो है समुन्द्र के किनारे होने के कारण समुन्द्र की घर 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 आवाज हमेशा आता रहता है, मगर वहां पे यमुना जी का जो सुंदर सा हवा धीरे धीरे से बहता है और वो अत्यंत मनोरम लग रहा है। यहाँ पे द्वारकापुरी जो है चारों तरफ समुन्द्र से घेरा हुआ है, मगर ये जो वृंदावन है वो चारों तरफ फूल फल से भरा हुआ, वृक्षों से भरा हुआ है। तोता मैना बैठ के वहां पे अपना कलरव कर रहे हैं और कोयली बैठकर अपना मधुर स्वर से गीत गा रही है, और यहाँ पे बहुत सारे दास दासियां हैं सेवा कर रहे हैं, मगर वहां पे सारे सखी हैं, सारे सखा हैं। और यहाँ पे आप लोग आठ पाटरानी हो, अष्ट पाटरानी अष्ट महिषियां हैं, मगर वहां पे रानी नहीं है, आठ अष्ट सखियां हैं जो कि हमेशा ये जुगल किशोर का, ये जुगल मूर्ति का सेवा में हमेशा लगे रहती हैं। और यहाँ पे ऐश्वर्य है, वहां पे माधुरी है, यहाँ पे हमेशा राजा है, राज्य होने के कारण दूसरे राज्यों के साथ हमेशा तनाव रहता है, डर रहता है कोई राज्य का आक्रमण करना ले, और कृष्ण राजा होने के कारण हमेशा युद्ध करते रहते हैं किसी किसी से। मगर वहां से वो सब नहीं है, वहां पे युद्ध कैसा होता है मालूम है, राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए सखियों के बीच में युद्ध होता है, वो कहती है कि मैं करूंगी और वो कहती है कि मैं करूंगी। ये मंजरियों के बीच में, सखियों के बीच में, गोपियों के बीच में कंपटीशन होता है कि मैं अच्छा सेवा करूंगा, मैं अच्छा सेवा करूंगा, इसी प्रकार से वो प्रतिद्वंदिता करते हैं। मगर यहाँ पे वो सब नहीं है, यहाँ पे तो एकदम से एकदम युद्ध का ऐलान हो जाएगा कि दोनों राज्य मिलकर एकदम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या है द्वारका में, द्वारका में वसुदेव जी जो है वो मन में कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। वसुदेव कौन है, कृष्ण के पिताजी है, और वो मन में प्रार्थना करते हैं कृष्ण को, अपने बेटे को। मगर वहां पे नंद बाबा भी कृष्ण का पिताजी, वो क्या करते हैं, लाला मेरा चप्पल लेके आजा बेटा। वही कृष्ण जिसका पिताजी मन में प्रार्थना करते हैं, वही पिताजी उनको ऑर्डर उस तरफ ब्रज में ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा चप्पल, और वो जा रहे हैं उठा नहीं, नाटक कर रहे हैं उठा नहीं पा रहा हूं करके, वो दोनों उठा के अपने अपने सिर के रख के हिलते दुलटे आ जाते हैं, बाबा बाबा ले आया चप्पल करके। ये अंतर है। यहाँ पे देवकी माता बेटा है उसको गोद में लेने के लिए, थोड़ा प्रेम से बात करने के लिए डरती है, देवकी माता, क्योंकि राजा है ना बेटा, वहां पे वो सब नहीं है। केवल इतना खबर मिल गया कि ये चोरी किया था, तो डंडा पकड़ के मारने लग गई थी यशोदा मैया। थोड़ा सा क्या मटकी फोड़ दिया, दूध थोड़ा सा दही गिरा दिया करके उखल में बांध दी थोड़ी देर के लिए। ये अंतर है गोप में और द्वारका में। यहाँ पे उद्धव जी जितने भी सखा है उनके हमेशा ऐसे खड़े रहते, कभी भगवान मुझे आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, मैं पालन कर। और वहां पे जितने सखा है उनके कंधे में चढ़ते हैं, लात मारते, चल हमको घोड़ा सवारी करा। ये अंतर है गोकुल में और द्वारका में। इस प्रकार के गोकुल ब्रज की सारा कथाओं को बताते बताते फिर उन्होंने उसी समय, क्योंकि ठीक उसी समय भगवान वहां पे और बलदेव जी वहां पे आके पहुंचे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पे मेरा भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं और मैं वहां पे ही रहता हूँ, और वो सभा भवा छोड़ के मेरा कथा चल रहा है, तो दोनों आ गए। मगर क्या करेंगे, वो बहन जो है अंदर जाने नहीं दे रही है, रोक के रखी है, तो दोनों खड़े होंगे, तीनों मिलकर कथा सुनने लगे। उस समय रोहिणी माता जो है और एक घटना को बताई कि एक बार वसुदेव जी ने फिर से यज्ञ करने जा रहे थे। नारद मुनि ने सब जगह खबर देते देते उन्होंने गोकुल में भी खबर दे दिया। जैसे ही खबर दिया, नंद बाबा यशोदा मैया को पास जब नारद मुनि गए कि यशोदा मैया पूछे कहां से आए, तो नारद मुनि कहे कि मैया मैंने तो द्वारका से आ रहा हूँ, द्वारकाधीश कृष्ण है, उन्होंने यज्ञ कर रहे। यशोदा मैया बोला मेरा पुत्र यज्ञ कर रहा है, मेरा लाला। नारद मुनि छेड़ दिए असलियत में, बोले कि तुम्हारा लाला, अगर तुम्हारा लाला होता क्या तुमको इन्विटेशन देने के लिए मना करता? कम से कम बोलता तो सही कि मेरा माता पिता जो नंद बाबा यशोदा मैया है, तो उनको बता दीजिए कि यज्ञ में आएंगे, ये तो नहीं बताया। तो आपका बेटा कैसा हुआ? इस बात को सुनकर यशोदा मैया और जोर जोर से रोने लगी। सोचिए, अगर कोई पुत्र इस प्रकार से अपना माता पिता का तिरस्कार करता है, तो कौन माँ का इतना कठोर हृदय है कि वो बिना रोए रह सकती है। और जैसे ही रोने लगी, नंद बाबा उस स्थिति को संभाले, अरे पगली अब क्यों रो रही हो, इतना मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, वो कोई पराया थोड़े हैं, हमारा पुत्र है ना, तो हमारा पुत्र है तो हमें क्यों इन्विटेशन देगा। इन्विटेशन सगे संबंधियों को, दूर की बंधुओं को दी जाती है, माता पिता को इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। बेटा का कार्य हो रहा है तो माता पिता को जाके वहां मदद करना चाहिए बेटे को, इसलिए हम लोग सब सुबह चलेंगे। यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो गए और सुबह निकल गए सारे ब्रजवासी बहुत सारा तोहफा लेके कृष्ण के पास द्वारका में। और देवकी माता को और कंस की माता पद्मा करके, वो भी उनके पास रहती थी कृष्ण के पास, जब कंस मर गया, कंस मर गए उसके बाद, तो पद्मा जो है नारद मुनि के ऊपर क्रोधित हो गई। आप नारद मुनि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, आप जाके क्यों उन ग्वाल वालों को बुलाएं, ग्वालों को बुलाएं, इतना भी अक्कल नहीं है उनको कि मेरे कृष्ण को उन्होंने एक जूता तक खरीद के नहीं दिया था, खाली पैर जंगल भेजते थे। इतने कंजूस थे, इतने स्वार्थी थे कि बच्चे को स्कूल में भी नहीं भेजा, उनको बछड़ों के पीछे ही भेज दिया, इतने बचपन से ही मेरा कितना उनको। और वो जो ग्वालिन जो है यशोदा जिसका नाम है, थोड़ा माखन क्या किसी के घर में चोर करके खा लिया मेरा लाला, घर में तो खिलाती नहीं थी हो, और वो दूसरे के घर में खाएगा ही, और दूसरे के घर में खा लिया तो उसको बांध दी और बहुत मारी। और ये जो ब्रजवासी भी देखो कि ग्वालन कितने कंजूस हैं, उनके घर में थोड़ा माखन खा गया छोटा सा बच्चा, तो जाके यशोदा के पास कंप्लेन करने की क्या आवश्यकता था, जाके बता दिए। और वो बताने के बाद ये यशोदा भी ऐसी है कि उसको पकड़ के मारने लगी, ऐसे लोगों को तुमने बुलाया यहाँ पर? तो सब लोग विचार किए, देवकी माता और पद्मा बोले कि ठीक है हम लोग सिक्योरिटी खड़ा करेंगे और उनको अंदर आने नहीं देंगे और वहां से ही भगा देंगे। ऐसे सोच को रात भर सोए नहीं, सुबह उठ के देखे तो इन लोगों से पहले नंद बाबा यशोदा मैया सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी पहुंच गए थे। पद्मा और नंद और देवकी माता जाकर देख के बहुत गाली देने लगे। पद्मा तो रोक नहीं पाई अपने आप को, बूढ़ी थी कंस का माता, वो पहले यशोदा मैया को यशोदा मैया को देख के बोली कि यमुना का जल क्या सूख गया था डूब के मरने के लिए, ये सूरत लेके यहाँ दिखाने के लिए आ गई। याद है तुमने मेरे कृष्ण के साथ क्या नहीं किया, उसको कभी अच्छा सा पहनने के लिए भी नहीं दिया, उसको एक चप्पल भी नहीं दिया, जंगल में भेजा था, थोड़ा दही खा लिया कहीं पे चुरा के करके उसको बांध के मारा, तुम इतना निष्ठुर हो। ये सब सुन के यशोदा मैया का हृदय जो है एकदम से मान लोग की यशोदा मैया का दिल को कोई मार मार के चूना कर रहा, और इतना दुखी हो गई कि उनके मुख से वाणी भी नहीं निकल रहा था और आंसू एकदम से झरझर से झर रहा था, और सारा ब्रजवासी अचंभित हो गए कि ऐसे बता रहे जो कि इतना विरह में है कृष्ण के और कृष्ण प्रेम के, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, और कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर उनको गाली देगा, इस प्रकार से चिल्लाएगा तो कैसे सहन कर पाएंगे। तो फिर भी कोई कुछ नहीं बोले तो देवकी माता रह नहीं पाई। देवकी माता बोली कि माता पद्मा आप ही बस कीजिए, बहुत हो गया, बेचारे कितने साधु हैं, इतना गाली देने पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, जाने दो उनको, यहीं से कृष्ण को देख के जाने के लिए बोलो। तो नारद मुनि आइडिया बताया, ठीक है अभी मैं समझ नहीं पा रहा, तुम भी माँ है, ये भी माँ है, अभी कुछ तो गड़बड़ी है, यहीं से अगर देख के जाना है तो कृष्ण को यहाँ बुलाया जाए और वो कृष्ण को देख के जाएंगे। नारद मुनि बोले ठीक है माता देव कि आप कृष्ण को बुलाइए। तो देवकी माता ने बोला कि आप जाके बुलाओ। नारद मुनि बोले ना बाबा, पूरे तीनों लोगों के देवी देवता लोग बैठे हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र सब लोग बैठे हैं, इनके बीच में मैं जाके कान में और यज्ञ में बैठे हुए हैं कृष्ण, मैं जाके बोलूंगा तुम्हारा माँ आइए आओ, और वहां छोड़ के आएंगे, सब लोग मेरे को चिल्लाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। पद्मा बोली मैं नहीं बुलाऊंगी। तो देवकी माता को कृष्ण ने बोले कि आप ही बुलाओ। तो देवकी माता यहां से चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण आप कृपा करके आएंगे यहाँ पर द्वार पर। तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा कृष्ण को। नारद मुनि बोलेगा अच्छा देखो कैसा बेटा है, माँ बुला रही है चिल्ला चिल्ला कर, वो सुन नहीं रहा है, मेरे को तो शंका हो रहा है कि वो बेटा आपका है कि नहीं। अच्छा अच्छा यशोदा मैया कह रही थी कि वो उनका भी बेटा है, अभी यशोदा मैया को मौका दी जाए, ये ऐसे बात नारद मुनि करेंगे। देवकी माता चुप हो गई। यशोदा मैया को बोला गया कि आप बुलाओ। जैसे यशोदा मैया को बोला गया बुलाओ तो सारे ब्रजवासी खुश हो गए। तो यशोदा मैया कहने लगी लाला, अरे ओ लाला। जैसे ये लाला शब्द कान्हा शब्द सुना, कृष्ण के कर्ण रंध्र में पहुंचा, हाँ, ओ, 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 एक भजन गाते हैं भक्त लोग उड़ीसा में, कान्हा रे मो कान्हा रे डाकुची यशोदा मो कान्हा रे, हे कान्हा आपका यशोदा मैया बुला रही है। जैसे ही ये कान्हा शब्द कृष्ण के कर्ण रंध्रों में पहुंचा, कौन सा यज्ञ में बैठेंगे, एकदम से वहां से उछले, सारे देवी देवता और रथी महारथी जो भी बैठे थे उनको धकेल कर उनके ऊपर से चढ़कर आके सीधा यशोदा मैया के गोद में चढ़ गए। और जैसे ही गोद में चढ़े नारद मुनि देखते रह गए, पद्मा का सिर झुक गया, देवकी माता झुक गई। थोड़ी देर के बाद भगवान सोचने लगा रे देवकी माता में बाजू में खड़ी है, आज तक उसने हिम्मत नहीं किया कि मुझे गोद में लेने के लिए, मग बिचारी वो दुखी हो जाएगी सोच के कृष्ण वहां से उतर के देवकी माता की गोद में चढ़ गए। कृष्ण बोला कि एक मिनट इंतजार करो, क्या कर रहे हो, ये आपकी मम्मी है कि ये आपका मम्मी है। मैं आज तक सुना हूं एक माँ का दो बेटा हो सकता है, मगर या दो बाप हो सकता है, एक माँ हो सकती है दो बाप हो सकता है, ये मैं सुना, मगर एक बच्चा है दो माँ कैसे है मैं समझ नहीं पा रहा हूं आज तक, मेरे को डाउट है इस पर। इसको डाउट ऐसे क्लियर करना चाहता हूं, जिसकी स्तन से दूध उछल आएगा, जिसकी स्तन से दूध उछल आएगा वो तुम्हारा माँ है। और जैसे ही कृष्ण आके देवकी मैया के गोद में चढ़े थे उसी समय, क्योंकि यशोदा मैया के गोद में चढ़े थे उसी समय यशोदा मैया के स्तन से दूध उबर आए थे, क्योंकि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को वात्सल्य भाव से भक्ति करती थी, और ये वात्सल्य प्रेम और ये वात्सल्य लीलाएं केवल यशोदा मैया के साथ ही भगवान किए थे, देवकी मैया के साथ नहीं, और देवकी मैया के स्तन से दूध नहीं उबर आए थे, और सारे ब्रजवासी खुश हो गए थे और लाला का नाम लेकर यशोदा मैया का नाम लेकर चढ़ दी थी। ये कथा को सुन रहे थे कौन, ये तीनों भाई बहन। ये कथा इतना हद तक जब पहुंचा तब तक जो है इनके अंदर ये अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ था, इनका हाथ छोटे छोटे हो गए थे, आंख बड़े बड़े हो गए थे, पैर छुप गए थे, और इस प्रकार से वो आश्चर्य हो गए, अपने ही कथा को सुन रहे थे कृष्ण बलराम और सुभद्रा। उसी समय ये हमारे नारद मुनि क्या कर रहे थे, मन जान में ऊपर से जा रहे थे, वो देख लिए कि चल क्या रहा है द्वारका में, बोले कह रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का इस प्रकार का अधूरा रूप मैंने कभी देखा नहीं आज तक, ये कौन सा रूप है भैया। तो आके वो तुरंत वहां पे उतरे और भगवान को देख के बार बार प्रणाम करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिवेस्तवेर् वेदेर् साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यं श्यामगः ध्यानावस्थितस्यद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार अनेकों स्तुति गान करने लगे भगवान का। नारद मुनि का बातों को सुनकर भगवान अपने स्वरूप में आ गए। नारद मुनि कहने लगे, भगवान अभी आप छुपाइए मत मुझे, मैं आपका सब कुछ रूप देख चुका हूं, आप कृपा करके मेरा इस अनुरोध रखिए कि इस प्रकार की ये राधा भाव की, ये ब्रज भाव की रूप में आप कलयुग के जीवात्माओं का पति, जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए आप प्रकट होइए और इसी रूप में लोग आपको पूजा करें। तो इस प्रकार के अपने भक्त का अनुरोध को सुनके कृष्ण उनको तथास्तु कहते कि उसी रूप में मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा मेरे भाई और बहन के साथ और सारे कलयुग के पतित जीवात्माओं का उद्धार करूंगा। और वही महाभाव प्रकाश जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में विराजमान है। ये जगन्नाथ और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है, जो कि राधा विरह विदुर के रूप में, राधा विरह के रूप में उपस्थित है। हम कल श्रवण करेंगे किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में लीलाएं करते हैं। ये तो उनके द्वारका की कथा जैसा लग रहा था अभी तक, अभी असलत में जगन्नाथ जी की लीलाओं को चालू करेंगे, जो कि इतने मधुर हैं कृष्ण लीलाओं जैसा, तो हम लोग सुनते ही रहेंगे। आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग कृपा करके इस प्रकार से सातों दिन तक आइए और इस कथा को आस्वादन करिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री सुदर्शन जी की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब की जय हो।